भगवान श्री ब्रह्मानंदाय नमः। भगवान श्री ब्रह्मानंदाय नमः। भगवान श्री ब्रह्मानंदाय नमः।
तो यहाँ पर रुक्मी पुत्र प्रद्युम्न और जम्बवती नंदन थाम्ब और सब जदुकुल का कुछ बड़े बड़े प्रधान लोग, मैंने उस समय उन लोग का उम्र आप समझ लो कि 60-65 साल उम्र हो गया है। हम उम्र के बारे में बता रहे हैं, चीज है इसका बाद आप समझोगे। तो वही उम्र का लोग सब बैठ के जम के आड्डा दे रहे थे, सुरापान हो रहा था, हंसी मजाक चल रहा था, इस तरह से मुनि लोग वहां से पास करते जा रहे हैं। ये लोग का मन में एक दुष्ट बुद्धि जागृत हुआ, फिर देखा जाए तो ये लोग क्या से मुनि है। तो सांब को एक साड़ी पहना दी, पहना के उसको औरत सजाया और पेट में कुछ कपड़ा बांध दिया। जाके मुनि जी के पास प्रद्युम्न जाके मुनि जी को प्रणाम किए और बोले, मुनि जी ये बहु को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि इसका पेट में संतान ठीक से रहे और ठीक से जन्म ले। मुनि जी तो पहले कृष्ण पुत्र बोल के बहुत स्वागत किए, धन्य हो, लेकिन जैसा ही ये बात को कहा साथ ही साथ मुनि जी का दर्शन का जो आईना, तो आईना में दिखाई पड़ा कि इतना झूठ और इतना मदमत्त हो गया, इतना अहंकार हो गया कि एक मुनि ऋषि के साथ, जबकि ये लोग जानते हैं दुर्वासा स्वयं में यहाँ पर पधार रहे हैं, तो भी हंसी मजाक करने के लिए वो लोग को थोड़ा बहुत हिचकिचाए थे मन में। तो साथ ही साथ बोला, अरे दुष्टगण, अरे मत्तलोक, आप तुम लोग का निधन काल आ गया है। तुम अपना भाई को अवरत सजा के नारी बेस लगा के तुम आके मुनि को छलना बंचर लगाने चाहते हो, मेरा अभिशाप है, खून लो दुर्वासा की अभिशाप, इसका पेट में एक लोहे का मुसल पैदा करेगा। ये पुरुष जात तो कभी पैदा करने का योग्य नहीं है, लेकिन ये पैदा करेगा एक मुसल, मुसल है जो भजा जाता था, इस प्रकार मुसल को पैदा करेगा, जो हमारे रिश्ता में जो कूटा जाता था इसको मुसल बोलता है, ये लोहे का होगा और यही तुम लोग का सर्वनाश का कारण बनेगा। उन मुसल को जो छुएगा चाहे कोई भी हो उसको तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो ये लोग बहुत माफी माफी मांगा, तो चलो छोड़ो रास्ता प्राय कृष्ण जी को देखने के लिए। कृष्ण जी वही हंसी, वही मधुर हंसी उनका मुंह में आए, उठे मुनि जी का चरण वंदना किए और रुक्मिणी जी को कहे कि अब तो थोड़े ही दिन बाकी है, चलो मुनि जी का आशीर्वाद तो ले लो। मुनि जी बड़ा लज्जित हो गए कि भगवान आप सब कुछ जानते हुए भी आशीर्वाद के लिए इतना लड़ाई हो गए, मैं तो एक बड़ा अपराध कर लिया भगवान। नहीं जी, आप तो कोई अपराध नहीं किए, आपका आगमन तो मुझे मालूम था कि आप आएंगे, क्योंकि एक गंधारी का श्राप काफी नहीं है ये जादव फूल के लिए, इसीलिए आपका भी आना जरूरी था। मैं जानता हूँ आपको बोलने के लिए तकलीफ करने का जरूरत नहीं, मैं जान लिया, मैं सुन लिया, मैं कुछ समझ लिया है, आप कृपा करके ये कृष्ण का ये शरीर का थोड़ा बहुत सेवा लीजिए और आशीर्वाद दीजिए ताकि जल्द से जल्द ये लीला समाप्त हो जाए। मुनि जी लज्जित होकर बारंबार कृष्ण जी से माफी मांगकर वापस चले गए। कुछ दिनों का बाद सांब ने एक मिसाइल को प्रसाद कर दिया। कृष्ण बोला, कृष्ण भगवान बात चंचल हो उठे, कब कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। समाचार आया कि सांबजी का एक मुसल प्रसाद सांबजी ने किया, साथे साथ बोला कि उसको कोई नहीं छूना है। कृष्ण का ऑर्डर तभी माना जाता था, ऐसा कोई द्वारका जादव कुल में कोई नहीं रहा जो कि कृष्ण जी कुछ कहेंगे आज नहीं सुनेंगे। तो वो मुसल को कृष्ण जी क्या किए, भोजपुर का कुछ लोग को बुलाए, अपना कर्मचारियों में से जो कि जादव कुल का साथ जिसका रिश्ता नहीं है उनको बोला इसको ले जाओ भाई, ये प्रभास बोल के एक क्षेत्र है, वहाँ पर जाके ये मुसल को कूट कूट के एकदम जैसा कि रेस होता है, मतलब बालू का जैसा, उस प्रकार चूर चूर करके समुद्र में उसको मिला दो, क्योंकि बड़ा खतरनाक मुसल है, जादव कुल का कोई भी इसको टच भी करेगा उसका मृत्यु तो निश्चित है। यहाँ पर यह कर दिया है जादव कुल को, बड़ा ये कर दिया कि भाई कोई प्रभास का उस तरफ नहीं जाना जब तक मैं नहीं कहता हूँ। कुछ दिन बीत गया, एक दिन उन्होंने कहा कि भाई बहुत रोज हो गए, हम लोग थक गए हैं, अभी कोई देखते लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, सब लोग भयभीत है, चलो कुछ मजा आनंद कर लिया जाए। ऑर्डर दे दिया गया, यहाँ पर 10 कोस का जमीन पर तंबू लगाया गया है, फलाना तंबू कृष्ण जी का, फलाना बलराम जी का, फलाना वो का, सबका तंबू लगाया गया है, वृद्ध लोग को नहीं लाया गया है, जबकि कृष्ण स्वयं उस समय उनका उम्र 93 ईयर्स मतलब 93 साल उम्र हो गया। सब नारी कुल को ले आया, मुख्य मुख्य नारी कुल के ले आया, कुछ नारी कुल को द्वारका में छोड़ के आए। आके गप हो रहा है, आनंद हो रहा है, खेल कूद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कृष्ण जी लेकिन ताक रहे हैं समुद्र का पति, जो समुद्र तो कुछ ये मांगा था, प्रतिशोध मांगा था, क्योंकि राम अवतार में मैं उसको बांध दिए थे, तो पति और माँ कुछ पतिकार पति बहुत कुछ मांगते हैं, वो कब प्रतिशोध। आज यहाँ पर आके सब जादवपुर क्या कर रहे हैं, जादवपुर पूरा पान होता है और हंसी मजाक से इसका औरत को वो हाथ पकड़ के खींचा, उसका औरत को हाथ हाथ पकड़ के खींचा, बस यही चंचलता में डूबे हैं। इस तरह से बाताबाती थोड़ा बहुत हो गया है, कृष्ण वर्मा का साथ कृपा कृष्ण वर्मा का साथ अत्यधिक और कुछ बाताबाती हो गया। कृष्ण वर्मा उस पक्ष में रहा कुरुक्षेत्र लड़ाई में, कोदमपुर में, और सातवकी पांडव पक्ष में रहा, तो कृष्ण वर्मा कुछ अन्याय किया था, सातवकी भी कुछ अन्याय किया था लड़ाई में। तो अचानक सातवकी जो कि जादव कुल का रिश्तेदार है, जादव कुल तो बहुत बड़ा कुल है, विष्णी यादव और क्या क्या नाम हम भूल गया है, आपको याद है ना, अच्छा 8 कुल को लेके जादव कुल है, तो 8 कुल मतलब आसपास को लेके जादव कुल है। ये जादव कुल को जो सातवकी है, सातवकी कृष्ण वर्मा को बोला कि तुम्हारा जवान खींच लेंगे, अरे तुम हमारा जवान खींचोगे, मैं कृष्ण वर्मा हूँ, मैं एक किस्म से तुम्हारा गुरुदेव हूँ और तुम हमारा जवान खींचने के लिए आए हो, वो भी अपना तलवार निकाला, वो भी अपना तलवार निकाला, बस लड़ाई शुरू हो गया। कुछ लोग सातवकी का पक्ष लिया, कुछ लोग इसका पक्ष लिया, अपने बीच में भाई भाइयों का बीच में लड़ाई शुरू हो गया है। लड़ाई शुरू होते होते वो लड़ाई तो इतना फैल गया है, दाऊ जी देखा और बोला कि कृष्ण जी अब क्या किया जाए, मैं चलिए दाऊ जी हम लोग भी कुछ निधन करें, दोनों भाई मिलकर वो लोग भी लड़ाई में शामिल हो गए। अब बेधड़क मारपीट हो रहा है, लेकिन जादव कुल का तो विनाश नहीं हो सकता है। इस तरह से देखा गया आदव कुल में कुछ उसको क्या बोलता है, सरतप
मुसल ना मुसल का तो चू करके भसा दिया गया था।
जो सरकंडा हुआ सरकंड, उस सरकंड जो है सरकंड यहाँ पर बहुत सारा सरकंड है, तो वो लोग क्या किया है,
वो तो बंगले में दिन काशपुल
बोले
मांगे काशपुल सरकंड को देखा कि एकदम सागर कुल भट्टी हो गया है, तो वही काशपुल का अंदर वो लोग सब यहाँ पर इतना जंगल वंगल नहीं था, पूरा साफ किया गया था, मतलब जादव कुल का यहाँ पर शिविर शिविर का सब लगाया गया था, वो तो कितना बड़ा स्थान बन गया था, तो काश फूल का जिसमें जिसका पार ये भूख जाता है बस वहीं कर देते, तो वही देख के वो एक एक काश फूल को उठाया, अस्त्र का तो खत्म हो गया, अस्त्र का तो खत्म हो गया, तो चूर चूर हो गया, जिसका जो बांध था सो निकल गया है, जिसका जो तलवार था सो टूट गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, अभी रह गया वही सरकंड, वो सरकंड लेके एक एक को भुगता है मृत्यु, दूसरा दूसरा को भुगता है मृत्यु, कृष्ण भगवान स्वयं भी कितने जादव कुल को सब ये कर दिया सब मृत्यु हो गया, अंत में देखा गया है जादव कुल में एक भी पुरुष जीवित नहीं है, कितना 56 कोटी ने कितना
56 कोटी
56 कोटी जादव कुल में एक भी पुरुष जीवित नहीं है, सब निधन हो गया कृष्ण और बलराम। तो बलराम बोला कृष्ण जी अच्छा नहीं लगता रे, मैं तो ध्यान में बैठूंगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रे। अच्छा दाऊ जी ठीक है आप ध्यान लगाइए, आके इस जगह पर उनका से माने एक तो ये था शिविर था, तंबू लगाया गया था, इस जगह में उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान का टाइम में उनका सर से या नाक से कुछ सांप निकाल आया और वो धीरे धीरे दिल में प्रवेश कर दिया, सांप तक वस्तु ही चले जाए। कृष्ण भगवान दाऊ जी करके पुकारते पुकारते आए, अंधेरा की उनका आंखों के सामने दाऊ जी का शरीर से नाक निकाल के बिल में प्रवेश कर दिया और दाऊ जी हसमुख होके बैठे हैं, तो वो बोला कि दाऊ जी आज तक जिंदगी में कभी मुझको छोड़ा नहीं आप, हम भी मुझको छोड़ के चला गया, हम दोनों भाई एक ही साथ पैदा हुए थे, आप चले गए ठीक जैसा आपका इच्छा, मैं भी आपके साथ आ रहा हूं। दारुक को बुलाया, दारुक अभी हमारा ये आकाश जान को लेके तुम हस्तिनापुर पहुंच जाओ और कहो कि सिर्फ अर्जुन अपना अस्त्र शस्त्र को लेके रथ पर उठ के द्वारका में आए, जितना जादव नारी को जितना हो सके उनका ताकत में जितना हो सके वो उन लोग को रक्षा करते हुए द्वारका से निकाल ले जाए, जल्दी जाओ वृंदावन त्यागने का बाद कृष्ण जी बंसी नहीं बजाए, तो उनका भी याद आया है यही तो अवसर है अभी थोड़ा बंसी बजाने का, यहाँ पर एक पेड़ रहा, वो पेड़ अभी ध्वंस हो गया है, दूसरा पेड़ वहाँ पर बैठा गया है, उसको हम लोग सुना था कि बकुल फूल का पेड़, कोई लोग कहते हैं कदम कदम फूल होता है, कदम फूल जानते हो
गोल गोल
गोल गोल पीला फूल, हाँ वही पेड़ में वो थोड़ा बहुत पैर को इस प्रकार से हिला के वो सब ऐसा हिल के वो लग गए और बंसी बजाना शुरू किया। एक बैद जानते हो ना,
शिकारी
ये शिकारी बेचारा पूर्व जन्म में अंगद थे, तो जब बालीबाद हो गया था अंगद प्रणाम करने के लिए आए और राम भगवान कहे थे बेटा तेरा मनोकामना पूरा होगी, तत्काल के उसका मनोकामना रहा कि हमारा पिताजी को जो जान से मार दिया मैं भी उसको निधन करूंगा, राम को ठीक परिचय नहीं मिला था, राम को ठीक नहीं जाना था, लेकिन वही मनोकामना लेके
तो चौंक उठा। उस समय प्रभु जी आप क्या आशीर्वाद दिए।
तथास्तु ठीक ही होगा।
वही अंगद घूमते घूमते शिकारी बांधकर यहाँ आए और कृष्ण जी का पैर का नीचे देख के उसको लगा है हिरण का कान। उन्होंने एक विष दिया हुआ जहर दिया हुआ जहरीला तीर विषैला तीर वहां से फेंका जो आके कृष्ण उनका पैर में लगा। दुर्वासा जी ने उनको कहा था भाई ये खीर को समूचा बदन में लगा के आओ, लेकिन वो पैर में लगाने का हिम्मत नहीं की। कोई पैर स्थान उसका बड़ा दुर्बल रहा, उसमें आके वो तीर रुका। उधर अर्जुन जैसा ही सुना क्या आफत हुआ उनका रुख, उसका बताने का नहीं है। प्रभु का जो आदेश है सो हम आपको बता रहे हैं कि आपको जल्दी चलना है, इसी वक्त चलना है, अस्त्र शस्त्र जितना आपका है वो लेके हमारे साथ रथापात रथ पर चल के आपको वहां द्वारका पहुंचना है। अर्जुन का रथ द्वारका प्रवेश कर रहे हैं, अर्जुन सुना जो वंशी का मधुर स्वर, वो वंशी का स्वर यह किया करता है जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानी भवती भारत। भारत मान अर्जुन अभ्युत्थान मधर्मस्व तदात्मान श्रीजाम। उसका अंदर रो उठा, क्या आप चल के नहीं सका, तदात्मान श्रीजाम आपका आत्मा भी नहीं है, आप चले गए नहीं सका, ऐसा माफ कर सका, मुझको छोड़ के मत जाओ। फिर वो दाल का प्रदेश के नारी लोग को उठाए, जितना हो सके सबको ले जाके हस्तिनापुर भेजा, किसी को कहाँ भेजा, किसी को कहीं भेजा, सब भेज दिए। दाल को बोला कृष्ण कहाँ, आप चलिए, वो भी अंगा है, आपको कृष्ण जी के पास ले जाना है। कृष्ण जी के पास यहाँ पर पहुंचे, रथ से उतरे, तो भी उस समय में भी उनका वंशी का एक मधुर स्वर उनको सुनाई पड़ा। और मधुर स्वर क्या बोल रहे हैं, पवित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संपन्नाय संभवामि युगे युगे। प्रभु यही सुना रहा है बंसी में। ये क्या प्रभु आप कहाँ है, देखा कि वो पेड़ का ऊपर वो लेटे हुए है, जाके देखा बस पार्थिव शरीर में प्राण नहीं है, पार्थिव शरीर चुपचाप पर है। तो इसीलिए प्रभु आप सुना रहे, कब संभव अभी आप होंगे कब नहीं होंगे हम नहीं जानते, लेकिन आपका बिना ये पार्थ कुछ नहीं है, हमारा शरीर में कोई शक्ति नहीं है। तब दारू जी कहे कि सबका तो दाह संस्कार करना है, तो यही दाह संस्कार किया गया था। और कृष्ण बलराम जी का दोनों का शरीर को अब बताओ, अर्जुन स्वयं वो दोनों का शरीर को उठा के रथ पर रखा, कोई तो है नहीं, दारुक तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, मुझे मत कहिए, पर उनके शरीर को हम कभी आज तक छुए नहीं, आज भी नहीं छू सकेंगे, जो करना है आप पका है आप करिए। शरीर को उठा के रथ पर ले गए और वहाँ पर कोई नहीं आए, जो कृष्ण का 56 करी परिवार, जो कृष्ण को दुनिया भर लोग डरते थे, जितना दुष्ट लोग सब लोग डरते थे, जो कृष्ण का नाम सारा भारत भूमि में प्रचलित हो उठा था, वही कृष्ण का मृत्यु का अग्नि संस्कार करने के लिए एकमात्र अर्जुन छोड़कर कोई नहीं है। अर्जुन जाके वही संगम में दोनों का शरीर पड़ रहा था। यही है इस स्थान का महत्व।
भगवान श्री ब्रह्मानंदाय नमः। भगवान श्री ब्रह्मानंदाय नमः। भगवान श्री ब्रह्मानंदाय नमः।
हम जीव जीवात्मा रूप लेकर सब शरीर में प्रवेश करते हैं, हम ही सर्वभूतानि
सब भूतों को भूत मतलब यही सब जनसमूह प्राणी समूह महामायण सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायाया जैसे कि एक जंत्र को बहुत सारा तार है उसको बजाया जाता है मैं इसी प्रकार से एक जंत्र बना के इसमें सब लोग को मैं घुमा रहा हूँ अगर यही कहकर आप पाप करेंगे दुष्कर्म करेंगे कुकर्म करेंगे तो आपको पाप नहीं मिलेगा क्योंकि ये अनुभव ये चिंतन आपके आपका मन में बसना चाहिए तब जाके ये मंत्र का बोलने का अधिकार आपको होगा क्योंकि आपका मन तो अहंकार में परिपूर्ण है इसीलिए आप नहीं जानते कि परमात्मा आपका जीवात्मा का तब मिलन हुआ बोल के ही तब जीवात्मा कुछ कर सकते चल नहीं सकते बोल सकते जो कुछ भी ना करना चाहते हैं वो रास्ते जा सकते यही बात है लेकिन ये अनुभव ये ज्ञान प्रकृत ज्ञान होना चाहिए तभी इसीलिए ये गीता के आधिकारिक जो है सब संत मुनि के लिए साधन मनुष्य के लिए उनको संनिविष्ट किए एक में कोई एक ये वस्तु में कोई एक मनुष्य शरीर में कोई एक मूर्ति में आप जाते हैं तो आप हर मूर्ति को प्रणाम करते हैं हर मूर्ति को आप हर संत को आप ये करते हैं सब में आपको मन बस जाता है कितना सुंदर है लेकिन यही सब तो सुंदरता तो है ही है सारा विश्व में ही सुंदरता है लेकिन एक में ही मन आपको लगाना पड़ता है जैसा कि हम लोग अपना लड़की के लिए दूल्हा ढूंढते हैं बहुत सारा दूल्हा को हम लोग देखते हैं बहुत सारा पसंद आता है लेकिन एक ही दूल्हा का साथ शादी होती है एक लड़की के लिए तो पांच दूल्हा संभव नहीं है दो दूल्हा भी संभव नहीं है एक ही दूल्हा तो उसी प्रकार हमारा बहुत सारा देवता है कहीं पर बजरंग बली का मूर्ति आए कहीं पर हनुमान जी आए गणेश जी आए कहीं पर काली बारी में भगवान आए लक्ष्मी जी आए सरस्वती जी आए काली जी आए शिव जी आए इतना सारा मूर्ति आपका सामने है आप एक में मन लगाओ तो कौन में मन लगाने से आपका सुख संपत्ति सुविधा मिलेगी वो आपको गुरु आपको निर्णय करते फलाने में मन लगाओ और गुरु जो बोलेंगे जिसमें मन लगाने बोलेंगे जैसा कि बाप लड़के के लिए जो लड़का को ढूंढ के लाते हैं उसी के साथ शादी होता है इसी प्रकार गुरु जो बोल देंगे वही आपके लिए ठीक है वही आपके लिए सत्य है वही आपके लिए परम ब्रह्म है मन भटकाओगे तो मन तो ऐसा ही चंचल है और मन का साथ चंचलता का साथ अपना दौड़ना शुरू करोगे तो कभी स्थिर भी नहीं हो पाओगे शांति भी नहीं मिलेगी चलो हम हर चिंतन में हर कदम में आपको आपको आपका अहम है
नहीं मैं जूता तो अंदर के प्रणाम करके बाहर आ गया
हाँ
इसमें अहम का क्या परिचय है
यहाँ पर अहम का परिचय तो नहीं है
तो ये जो आप बता ना ये चीज जो लिख है
हाँ
उसको खुद पता नहीं चलता मेरा अंदर अहम है
हाँ पता चलता है अगर नहीं भी चलता है तो उनको पता चलाने के लिए गुरु है गुरु बोल देगा तुम बहुत अहंकारी है घमंडी हो इसको त्याग करो गुरु का धमक खाते 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 एक दिन अहम को नाश हो जाएगा गुरु का प्रति कम से कम अहम नाश होना चाहिए आदमी लोग असत्य बोलते हैं क्यों
पहले प्रत्येक लोगों में जो अहमिका है
हर इंसान में अहमिका है हर इंसान ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका अहमिका नहीं कोई भी एक नहीं
आदमी असत्य इसलिए बोलते हैं
अहम की बात है दिन में आपको जो बीमारी प्रवेश करता है आप जानते हैं समझ सकते हैं आपका शरीर में बीमार हो गया क्या खाने से आपका पेट दर्द शुरू हो गया क्या खाया कि आपका सर दर्द शुरू हो गया क्या खाया कि आपको नींद आराम हो गया आप जान सकते हैं आप बोल सकते हैं अंदाजा डॉक्टर लोग मेडिसिन देते हैं इस प्रकार दर्द होने से इस प्रकार का ये होने से इस प्रकार लैटरिन होने से एक दवाई दो कुछ मारा तो सिम्टम्स देख के उन लोग का विचारधारा उनका
सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभोस्त्रायिनो देव ब्रह्मानन्दं नमस्तुते। सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभोस्त्रायिनो देव ब्रह्मानन्दं नमस्तुते। सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभोस्त्रायिनो देव ब्रह्मानन्दं नमस्तुते।